وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا، اور وہی ہے جس نے حکم کا پابند کر دیا سمندر کو. اتنا بڑا سمندر ہے اور کیسے نہ نظر آنے والی نکیلیں ڈالی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے. ہمیں نہیں نظر آتی لیکن سمندر کو پتہ ہے کہ میں کہاں رکنا ہے. کنارہ آ گیا تو اب اپنی موجوں کا زور توڑ دوں، کہاں بڑی بڑی چھل لے کے جانی ہے، کہاں تک مچھلیوں کو لے کے جانا ہے، کہاں نہیں جانا. تو پہلی چیز کیا ہوئی، سخر البحر لتاکلوا منہ لحما طریا. اس آیت میں سمندر کے تین فائدے ہمیں پتہ چل رہے ہیں. نمبر ایک، لحما طریا، تازہ تازہ گوشت کھاتے ہو، فریش میٹ. طریا کا لفظ خاص طور پہ گوشت کی تازگی کے لیے آتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے فریش میٹ اگر کوئی کھاتا ہے تو وہ فش کھاتا ہے. ابھی سمندر سے نکالیں، ذبح کرنے کی بھی ضرورت نہیں، بس نکالیں اور اس کو کھا لیں. سی فوڈ مہنگا ہوتا ہے سستا؟ ہر دور میں مہنگا ہوتا ہے. اگر اسلام مہنگا کھانا کھانے سے منع کرتا تو پھر مچھلیاں کیوں پیدا کرتا؟ کہتا نہیں جاؤ دال سخت کھاؤ، نہیں کھاؤ. اور اگر سارے مچھلی کھانا چھوڑ دیں تو ان مچھلیوں کا بنے گا کیا؟ تو لہٰذا یہاں پھر آپ کو وہی سوچ مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ کو غربت سے نہیں جوڑنا چاہتا. آج خیال کیا لوگوں کا آتا ہے کہ دنیا کی دولت اور تقویٰ کی دولت اکٹھی نہیں ہو سکتی ایک شخص کے پاس. اگر دنیا کی دولت ہے نا، یہ ضرور جہنمی ہوگا. اچھا کھاتے ہوئے دیکھا کہا، دیکھو اچھا کھاتے ہیں. اچھا پہنتے دیکھا کہا پہنتے ہیں. تو کیا ہوگا بھائی؟ آخرت کے مقابلے میں اگر آپ اس دنیا کو دیکھیں، یہاں کوئی روز سی فوڈز کھا لے، ڈائمنڈس پہن لے، آخرت کے مقابلے میں پھر بھی زیرو ہے. تو اللہ کی ذات یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں دیکھتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی ایک جھلک دنیا کے سارے غم بھلا دے گی اور جہنم کی ایک جھلک دنیا کی ساری خوشیاں ختم کر دے گی. تو اس دنیا کی چیزوں کو بہت زیادہ ڈسکس کر کے اپنے آپ کو کسی کے لیے بوجھ بنا دینا، یہ بھی درست نہیں. یہ بھی ایک قسم کی رحمانیت والی چیز ہوتی ہے. پھر دوسری چیز جو بڑی خوبصورت ہے، جس پہ ہم لوگ بہت کم غور کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وَتَسْتَخْرِجُ مِنْهُ حِلْيَةً، تم اس میں سے زیور بناتے ہو. حلیہ کا لفظ ہا لام یا سے، ہولی کی جمع، یہ موتی گونگے پرلز جس کو آپ کہتے ہیں، اس کا لفظی معنی زینت ہوتا ہے. آپ کو شوق بھی ہوگا، خواتین پہنتی بھی ہیں، مختلف طریقے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کیسے بنتا ہے موتی؟ اللہ تعالیٰ نے سیپ ایک رکھے، آئسٹر بولتے ہیں اس کو، یہ جانور ہے، دیکھنے میں بے جان لگتا ہے. جو سیپ شیلز ہمیں ملتے بھی ہیں اکثر سمندروں کے کناروں پہ، اصل میں یہ کیڑا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ سمندر میں سے صرف ایک ریت کا ذرہ اس کیڑے کے منہ میں چلا جاتا ہے اور وہ اس کو چبھتا ہے. اس کی چبھن کو ختم کرنے کے لیے وہ کیڑا اپنے منہ سے لعاب نکالتا ہے اور اپنے گرد اس کی ویکسنگ کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس کا جو لعاب ہے وہ موتی کی شکل میں بن چکا ہوتا ہے. وہ اپنے شعر بھی سنا ہوگا نا کہ کیا گزری ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک. اسی طرح زندگی میں کئی بار ایسی فرکشنز آتی ہیں کہ انسان کو کوئی چیز چبھ رہی ہوتی ہے. آپ کو اس اللہ کے راستے میں آنے میں کئی کچوکے لگیں گے، کتنی ٹھنڈی ہوائیں لگیں گی، کتنی برف پڑے گی، لیکن ان کو چبھنے دیں، اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے ارد گرد ایسے شیل بنائیں. اللہ کے راستے کے یہ کانٹے ایک دن آپ کو بھی موتی بنا دیں گے اور آپ چمک کے نکلیں گے. اور جو تھپیڑے نہیں سہ سکتا سمندروں کے، وہ موتی نہیں بنتا، اتنا ملائم ہوتا ہے. آپ ہاتھ لگائیں، دو موتی ہیں نا، ایک سچا موتی ہے، ایک موتی بھی شاید آپ سیٹ میں ڈلوا لیں تو کئی ہزار مہنگا بن جائے سیٹ، اور دوسرا وہ ہے جو سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہوئے سیپ بنائے ہوئے ہیں، وہ سیت ہے تو وہ لے لو. پھر دنیا تو یہ کچے موتی ہیں، وہ تو آپ کو 100 روپے کی پوری لڑی بھی مل جائے گی، اور اگر سچا موتی بن جائے تو کچھ تو کرنا پڑے گا. اور زیورات کی بات ہوئی، پہنتی عورتیں، لیکن یہاں تلبسونہا کہا، تم پہنتے ہو، مردوں کو کہا گیا. اس سے بھی ایک لطیف سا نقطہ نکلتا ہے، زیور چاہے پہنتی عورتیں ہیں لیکن اس سے فائدہ ان کے شوہر اٹھاتے ہیں. عورت کی خوبصورتی، اس کی آرائش مردوں کے ہی فائدے کی چیز ہے، اور اگر کوئی مرد کہے پہنو تو پھر عورت کو پہننا چاہیے. اس میں آپ کے لیے ایک اور بڑا اچھا نقطہ مل گیا کہ اگر آپ کے شوہر کہتے ہیں کہ آپ پہنیں اچھے زیور پہنیں، تو آپ یہ نہ کہیں نہیں اب میں قرآن والی ہو گئی ہوں، اب میں نہیں کر سکتی. کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جو ایسے ہو گئے ہیں؟ میرا خیال ہے اب آپ لوگوں کے گھر والوں سے بھی رابطہ کرنے کی ضرورت ہے. چیک تو کریں نا کہ آپ کیسا اسلام اپنے گھروں میں لے کر جا رہی ہیں. اور یہ ساری نعمتیں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا کیوں ہے کہ تم بھی غور کرو. आप देखिए कि जो खवातीन जेवर नहीं पहनती ना, उनके मिजाज में सख्ती होगी, वो मर्द बन जाती हैं। बस लोग इसको एक ऐब समझते हैं औरत का, आज के दौर का एक फैशन है। मैं जेवर नहीं पहनती, मैं ज्वेलरी नहीं पहनती। आपके हाथ में थी शुरू से गुड़िया की जगह पे कंप्यूटर, आप तो नहीं पहनेंगी। जेवर पहनना तो औरत की खूबी है, अच्छी बात है, उसमें डेलिकेसी आती है, उसमें नरमी आती है, उसमें मोहब्बत है, वो अपने शौहर की खुशी का सबब बनती है। तो इन चीज़ों को ना तो अपने लिए कोई बोझ बना लेना चाहिए कि इसके बगैर आप निकले ना, कि आज नई चूड़ियाँ नहीं तो हम कहीं जा ही नहीं सकते, और ये चूड़ियाँ तो पिछली शादी में पहन ली थी तो अब इस शादी में फिर वही पहन लूँ, और एक ही चूड़ियाँ बार बार ज्वेलर से जाके बदलवा के पहनते हैं ताकि पता चले इतने सेट हैं चूड़ियों के। हाँ, इन मुसीबतों में ना पड़े, है तो पहन लें, नहीं है तो ना पहने। मर्दों की तरह चूड़ियाँ पहन के घर भी ना बैठ जाएं कि चूड़ियाँ पहननी है तो अब काम नहीं कर सकते, अब नोट्स नहीं ले सकते, चूड़ी पहननी भी है, आपको तो बाकी नहीं पहननी चाहिए, आप तो पहले ही इतनी खटखट करते हैं, चूड़ियाँ पहन के आ गए तो फिर तो और हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, सारी रिकॉर्डिंग चूड़ियों से भरी होगी। लेकिन इन चीज़ों को बहुत ना लट डाउन करें। मैं जो बात कहना चाहती हूँ वो ये है कि कट डाउन ना करें, लोगों को दिखाएं कि दीन बड़ा नेचुरल है, तलबसू ना, क्योंकि आप देखिए जब पहनना है तो बिकेगा भी ना। अगर आप सोचिए कि ये चीज़ें मना होती, मिसाल है कि महंगी गाड़ी आप नहीं ले सकते, तो डेफिनेटली फिर महंगी गाड़ी बेचना भी गुनाह थी, वो बिज़नेस हराम हो गया। सारी लक्सस कंपनीज और जो लैंड क्रूजर्स और जो मर्सिडीज़ हैं वो सारे हराम काम कर रहे हैं। अब आप कहेंगे रेशम अगर पहनना महंगा है मुश्किल है, तो फिर तो सारा रेशम का कीड़ा ही काम ख़राब कर रहा है, दुनिया का निज़ाम नहीं चलेगा। अल्लाह चाहता है कि इन चीज़ों के साथ रहते रहते तो मुझे ना भूलो, और अब अच्छे कपड़े पहनने हैं तो अब कश्ती में बैठो। व तरल फुल कमवा खीराफीका, ये तीसरा फ़ायदा समंदरों का कि तुम कश्तियों को नहीं देखते। मवाखिरा, माखिरा तुन की जमा, मखरा कहते हैं किसी चीज़ को काटना फाड़ना, कश्ती का पानी को फाड़ना कि आवाज़ पैदा हो, इसको कहते हैं मखरा। और माखिर कहते हैं वो कश्ती जो पानी को फाड़े, इसी की जमा फिर मवाखिर है। कभी कश्ती चलती देखी और इस आयत के लफ्ज़ों पे गौर करें तो ऐसे लगता है कि वाकई दोनों एक ही ज़ात की तरफ से बातें आई हैं, बिल्कुल एक ख़ास सोच जो पैदा होती है ना वो है। और मखरा कहते हैं चुड़ाई के रुख पे फटना, ये देखिए ऐसे कश्ती जब चलती है तो यूँ फाड़ती है ना पानी को, ये नहीं फट रहा, मखरा कहते यूँ फटने को, वेड़थ में फटना, चिरना। सुभान अल्लाह, कोई भी अल्लाह के कलाम का मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों कश्ती फाड़ती है पानी को, दरियाओं को? वली तब तक हूँ मिन फतली ही, ताकि इसके ज़रिए तुम तलाश करो, तुम्हारी चीज़ें इधर से उधर आएँ, तुम्हारी शिपिंग हो, तुम्हारी खाने पीने की चीज़ें इधर से उधर आएँ। ये कश्तियों के ज़रिए तो हो रहा है, अल्लाह ताला ने ये सब कुछ बना के इंसान के लिए छोड़ दिया कि तुम इस्तेमाल करो, और साथ ही फरमाया वलअल्लकुम तशकुरून, ये है खुलासा, फिर शुक्र करो ना, शुक्र ना बनो ये जेवरात और खाने पीने खा पी के, शुक्र करो, खूब अच्छा खाओ, खूब अच्छा काम करो, खूब अच्छा पहनो, खूब अच्छा काम करो, खूब अच्छे घर में रहो तो खूब अच्छा उस घर को बनाओ, अल्लाह के लिए उसको रखो, खूब अच्छी गाड़ी ले लो, अगर हिसाब दे सकते हो तो फिर तुम उसको करो। देखिए कि अगर ये दौलत माल जमा करना मुश्किल होता या नहीं जायज़, तो निसाब क्या ज़रूरत ही देने की ज़कात का। आप पढ़ चुके हैं किताब ज़कात में, एक एक चीज़ के ज़कात की बात आई, सोने की, चांदी की, बकरियों की, तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला के हुक्मों की बंदी भी हैं। एक रिपोर्ट है मेरे पास कि वेस्ट अफ्रीका का एक शहर एवोरी सिटी, साहली समंदर है, बिजली यहाँ कसरत से है, इसको अफ्रीका का शोकेस कहा जाता है, यानी इतना एडवांस और तरक्की याफ्ता था। लेकिन दिसंबर 1983 को अचानक एक ऐसा मुल्क बन गया कि जहाँ लोग मोमबत्ती की रोशनी में खाना खाने पर मजबूर हो गए। क्यों? पन बिजली थी, उससे बिजली पैदा होती थी, बारिशें ना हुई, बारिश की कमी हुई, डैम खुश्क हो गए, सारी सनती तरक्की जो थी उनकी ख़त्म होकर 25% रह गई, कंप्यूटर फेल, लिफ्ट में फंसने के डर से लोग उसमें ना बैठे, सिर्फ एक बारिश नहीं हुई, सारी की सारी तरक्की जो है वो हाथ में आ गई। ये है असल में गौर की बातें कि देखो अल्लाह की ज़ात ये कितना कुछ तुम्हारे लिए करती है। फिर आयत 15 में आसमान और ज़मीन की कुछ और चीज़ों की बात, वह अल का फिलर दिरवासिया, और अल्लाह ने गाड़ दिए तुम्हारे लिए ऊंचे ऊंचे पहाड़, रासियतुन की जमा, भारी रस्सियाँ, भारी पहाड़, क्यों डाल दिए? अन तमीदा बिकुम, कि ज़मीन कहीं लरसती ना फिरे तुम्हें लेकर। तमीदा का जो लफ्ज़ है ना, ये मैदा से है, मैदा मस्तर है, इसका मानी होता है डगमगाना, मुस्तरिब किस्म की हरकत देना, कि पहाड़ जो हैं ये असल में कील है, नेल्स। अगर पहाड़ उठा लिए जाएं तो ये ज़मीन लुढ़कने लगे, क्योंकि आज साइंस ने भी कह दिया कि ये गोल या ओवल है। तो पहाड़ों के ज़रिए जमा दिया गया ज़मीन को, वह अनहारन और नहरें जारी कर दी, वह सुबुल लकुम तहतदून और रास्ते बना दिए ताकि तुम हिदायत हासिल करो। अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए ये सारे रास्ते बना दिए इस कायनात के अंदर के तुम देखो और इससे फ़ायदा उठाओ। और साथ ही साथ जब सितारों की और हिदायत की बात हुई तो फरमा दिया वह अलामात और रास्तों पर अलामतें बना दी, वह बिन नजम हुम यहतदून और सितारों के ज़रिए वो राह पाते हैं। यहाँ फिर बार बार आप देख रहे हैं कि सितारों का तस्कर आ रहा है। अल्लाह ताला इतना कुछ दे रहे हैं हमें कि ये है वो है, सितारों की बात करके कह दिया कि इससे तुम रास्ते पाते हो। देखिए आसमान के सितारे रास्ता दिखाते हैं और ज़मीन के सितारे रास्ते से भटका देते हैं। ये ज़मीन के सितारे कौन से होते हैं? स्टार्स, सुपर स्टार्स। उनके पीछे लगने वाले रास्ता खो देते हैं और आसमान के सितारों के पीछे लगने वाले रास्ता पा देते हैं। तो फिर सितारों पे कमंदे डाले ना, फिर औलाद को ऊंचे अजाइम दें, उनको छोटी छोटी चीज़ों में ना रखें। अब यहाँ अलामात का तस्करा आया है, अल्लाह ताला ने अलामतों का तस्करा किया। असल में तो देखा जाए तो ये सारी अलामतें किस चीज़ की हैं? नंबर एक, अल्लाह की मार्फत की। इस कायनात को देखते हैं तो ये अल्लाह तक पहुँचाती हैं कि कितनी बड़ी वो ज़ात होगी जो ये सब कुछ कर रही है तुम्हारे लिए, उसकी खलाकियत की, उसके खूबसूरत तरीके से काम करने की दलील है। इसी तरह आप देखिए कि इंसानों के अंदर भी कुछ अलामतें होती हैं, किस चीज़ की? जन्नत में जाने वालों की। जो इन सारी चीज़ों पे गौर व फिक्र कर लेते हैं ना, तो वो देखते हैं। दुनिया में देखा जाए तो ये पहाड़, दरिया, रास्ते ये अलामतें हैं ना। अगर मिसाल है कि ज़मीन पूरी चटियल होती, कैसे रास्ते बनते? ओशन सारे एक तरफ होते, आधी ज़मीन पानी की होती, आधी खुश्की की होती, कोई टीला टिब्बा ना होता, तो हम हैरान परेशान होते। ये पहाड़, टीले, दरख्त, दरिया, ये इब्तिदा में इनके ज़रिए से रास्ते बने थे, सड़कें बनती थी, अल्लाह ताला ने इनको रखा। जो लोग इन चीज़ों पे गौर करते हैं ना, तो उनके अंदर जन्नत में जाने की अलामतें पैदा होती हैं। कौन सी हैं जन्नत में जाने की अलामतें? कैसे पता चले कि मैं जन्नत में जा रही हूँ कि नहीं? नंबर एक, दिल में नेकियों की रग़बत है कि नहीं। फिर नेक्स्ट, गुनाहों से बेरग़बती। अगर ये अलामतें आ रही हैं तो खुशियां मनाएं। फिर दिल नरम हो जाता है। जन्नत में जाने वालों के दिल बड़े नरम होते हैं, वो हर वक्त अपने आप को नेक और दूसरे को बद नहीं साबित करते। फिर इसी तरह किसी की बुराई दिल में नहीं ठहरती। आ सकती है बुराई, इंसान है, मट्टी पड़ती है दिलों पे भी, लेकिन ठहरती नहीं। ख्याल आया और औस बिल्ला पड़ी और निकल गया। फिर इसी तरह अगली अलामत होती है जन्नत में जाने वालों की ज़ुबान की हिफाजत, बहुत सोच के बोलते हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, सिला रहमी, वन साइडेड किस्म का एहसान करते हैं, वो रवैया अख्तियार करते हैं लोगों के साथ। फिर इसी तरह आप अगर ये अलामतें पढ़ना चाहें तो किसी भी एक सहाबी की ज़िंदगी की कहानी पढ़ लें, आपको पता चलेगा कि अल्लाह की तरफ जाने वाले और अल्लाह ताला से अजर पाने वाले, उसकी उम्मीद रखने वालों के अंदर क्या खूबियाँ होती हैं, क्या अलामतें हैं, क्या रास्ते होते हैं। वो छोटी छोटी बातों में परेशान नहीं हो जाते। अब ये सारी बातें कह के अल्लाह सुबहान तआला ने आगे फरमा दिया, अफमई यखलुकु कमल ला यखलुकु, क्या जिस ज़ात ने ये सब कुछ पैदा किया उसकी तरह हो सकती है जो कुछ नहीं पैदा करते? ये आयत मक्का वालों के ऊपर एक पत्थर बन के लगी होगी कि हम तो पता नहीं किसके आगे बैठे हुए सर टेक रहे थे और अल्लाह ताला हमें दावत दे रहा है कि सोचो कि मैंने ये सब पैदा किया तो क्या तुम्हारे भी ऐसे हैं जिन्होंने पैदा किया? अफला तज़क्करून, क्या तुम इतना भी गौर नहीं करते? तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है? इतना कुछ जिस रब ने तुम्हारे लिए पैदा किया उसको छोड़कर फिर कुछ ना करने वालों के आगे बैठे होते हो? वइन तउद्दु नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, तो नहीं कर सकते। देखिए सारी नेमतों को तो छोड़ दें, सिर्फ सितारों को गिनना शुरू कर दें तो गिन सकते हैं? बारिश के कतरे गिन सकते हैं? अपने सर के बाल गिन सकते हैं? चले आज कोशिश करें सिर्फ पलकों के बाल गिन के आएं। अपने बैकयार्ड के अंदर लगे हुए किसी दरख्त की सिर्फ एक डाली पे लगे हुए पत्ते गिन लें, तो इंसान को अपनी बेबसी का यकीन आ जाएगा कि मैं बहुत छोटा हूँ। एहसान ही कर सकते, गिनना तो फिर एक बात है, उसको जमा करके उसके बारे में सोचना, गौर करना तुम कर ही नहीं सकते, तुम घिराव नहीं कर सकते। तो मान जाओ कि इन अल्लाह अल गफूर रहीम, बेशक अल्लाह ताला खूब बख्शने वाला और मेहरबान है। अल्लाह की ज़ात बंदे से बड़ी मोहब्बत करती है, इतना कुछ बना के भी गाफिल नहीं है। हमारा हाल क्या है कि ज़रा एक से दूसरी जगह काम शुरू कर दें तो पहला काम हमारी नज़रों से ओझल होता है। अल्लाह ताला एक ही वक्त में इतनी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, इसके बावजूद वल्लाहु यालमु मा तुसिर्रून व मा तुलिनून, अल्लाह ताला खूब जानते हैं जो तुम छुपाते हो और जो जाहिर करते हो। क्या छुपाते थे? शिर्क छुपाया हुआ था दिलों में, उसके साथ उसकी बड़ाई, उसकी मोहब्बत, उसके सहर में मुब्तला थे। और जाहिर क्या करते थे? बज़ाहर ज़ाहरी नेकियाँ, काबा के अंदर जाके वहाँ कुछ ज़ाहरी रिचुअल कर लेते थे, और दिल में मोहब्बतें दूसरों की थी। काबल्लज़ीन यदून मिन दूनिल्लाह, जिनको वो लोग जो पूछते हैं अल्लाह के सिवा गैरों को, कौन से हैं वो लोग? ला यखलुकून शैया, जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते। वहुम युखलकून, और वो तो खुद पैदा किए गए हैं। यानी कितने बदकिस्मत लोग हैं कि इतनी जिंदा और पायदार हस्ती को छोड़कर मुर्दाओं को पूछते हैं। पैदा करना तो दूर की बात है, वो खुद पैदा किए गए थे कभी, और अब तो उनका हाल क्या है कि अमवातुन, मुर्दा हैं, गैरु अहयाइन, जिंदा नहीं है वो। तुम जो मर्जी कहानियां घड़ लो उनके नाम पे, वो कब्रों में जा चुके हैं, मर चुके हैं, दफनाए गए, पानी उन पर डला, मनो मट्टी के अंदर डाल दिया गया। वमा यशउरून अय्याना युबअथून, और उनको तो इसका भी शऊर नहीं कि कब उठाए जाएंगे, क़यामत कब आएगी, दोबारा कब उठेंगे। तो जो इतने बेबस है, क्या तुम उनके पीछे लगते हो? अब देखिए कहाँ पे कहानी ख़त्म हुई, ऐसे लगता है कि ड्रॉप सीन है इस वक्त। पूरी जो कहानी सुनाई गई वो अल्लाह की कुदरतों की, कि देखो इतने प्यारे रब को छोड़ के मुर्दों को पूछते हो। अब बताएं कि जो बंदा ये आयतें पढ़ता है, फिर उसका दिल चाहता है किसी कब्र पे जाके माथा टेकने को, किसी करनी वाले, किसी गौस कुतब को पुकारने को? यही वजह है कि कुरान पढ़कर फिर शिर्क से नफरत हो जाती है, और शिर्किया कारोबार करने वाले कभी पसंद नहीं करते कि लोग कुरान पढ़ें, सारी तो दुकानें बंद हो जाएंगी। अच्छा, ये जो आयत बीच में गुजरी ना, आयत 16 में, अलामात तुम व बिन नजम हम यख्तदून, नजूमी लोग इस आयत को कोट करते हैं, कहते हैं देखो अल्लाह ने कहा है कि सितारों से किस्मत मालूम करो। अल्लाह तो रात के सितारे दिखाता है, लेकिन कुछ दिन को भी सितारे देख रहे होते हैं हॉरोस्कोप के, कि मेरा ये हफ्ता कैसा होगा। तो बहरहाल मुझे तो बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि जुबान बंद हो जाती है इन आयात को पढ़ के, अपने दिल पे अल्लाह की बड़ाई को महसूस करें कि इतनी बड़ी ज़ात की किताब मैं पढ़ रही हूँ, इतनी बड़ी ज़ात मुझे अपनी तरफ बुलाती है दिन में 5 बार, इतने बड़ी ज़ात के घर में जाती हूँ मैं हज करने। तो इंशाल्लाह ताला हमारी इबादात में भी तासीर आएगी और मामलात में भी। यहाँ पे सबक पूरा होता है। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।